ओम शांति। 15 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। पवित्र बनना है तो याद की यात्रा बहुत जरूरी है। याद की यात्रा मतलब बाबा की श्रीमत पर चलते हुए हमारे में उन्नति चाहिए, चढ़ती कला चाहिए, सुधार चाहिए। यदि हम सुधार कर रहे हैं तो हम पवित्र बन रहे हैं, और यदि हमने सुधार करना रोक दिया, पवित्र बनना रोक दिया, फिर पवित्र बनेंगे कैसे? पावन बनना है तो पवित्र बनने की यात्रा पर अपने आप को आगे बढ़ते ही रहना होगा। रुक गए तो फिर तो नहीं बन पाएंगे ना, तो बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विस एबल गुणवान बन सकते हो। योग बल से, योग बल किसे कहते हैं याद है? योग बल भूलना नहीं चाहिए। हाँ जी, योग बल का मतलब होता है बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभव। जितना हम बार बार बाबा की श्रीमत पर चलकर सफलता प्राप्त करेंगे, जितनी बार हम हलवा बनाएंगे उतना हलवा बनाने में एक्सपर्ट होते जाएंगे। जितना हम बार बार बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी शक्ति बनती जाएगी। एक्सपर्ट बनते जाना ये बल होता है, योग बल। योग बल से तुम सर्विसेबल, क्योंकि आपके अंदर योग बल होगा, आप योग के अनुभवी होंगे तो सर्विस करने लायक भी बनेंगे, गुणवान बन सकते हो। प्रश्न, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। जो तुम योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? उत्तर, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हो वे मनुष्य के साथ योग सीखते थे, मनुष्य ही सिखाते थे। योग किसके साथ था? किसी ना किसी मनुष्य के साथ, किसी ना किसी देहधारी के साथ, सिखाने वाले भी देहधारी। परंतु अब आया है राज योग सिखाने, स्वयं परम पिता परमात्मा जिसका अपना कोई शरीर नहीं, सिखाता उनको और जिनको समझ में आ जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। सिखाने वाला भी आत्मा, सीखने वाले भी आत्मा। और योग लगाना किसके साथ है? अशरीरी परमात्मा के साथ। कितना बड़ा अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है कि योग जो है, आज तक की जो भ्रांति है, आज तक जो नहीं समझ पा रहे, उसका कारण यही। बाकी जितने भी योग सिखाने वाले हैं, मनुष्य को सिखाते हैं और मनुष्य से योग लगाना सिखाते हैं। परंतु यहाँ परमात्मा राज योग सिखाते हैं और वो आत्मा को सिखाते हैं, और वो अशरीरी परमात्मा से योग लगाना सिखाते हैं। लगाने वाले को भी पहले कंडीशन है कि शरीर को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, देह और देह के संबंधों को भूल, मुझ एक बाप को। पहले दिन बताता हमें, हम आते ही ना, नहीं सही बात है। हाँ, पार्ट आते ना, मतलब वैसे बता रहा हूँ, अब जाकर के समझा रहा है बाबा ना। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, आत्मा भी निराकार और बाप भी निराकार, ये है सबसे निराली बात, ये है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद करते तो बिगर परिचय। दुनिया में भगवान को कोई याद करते हैं तो वो बिगर परिचय के करते, ऑक्यूपेशन के बिना। किसी को याद करना ये भक्ति है, मतलब बिना परिचय के किसी को याद करना, जिसका हमें पता नहीं वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहां रहता है, है क्या वो, उसको याद करना ये भक्ति है। भक्ति माना अंधविश्वास, अंधविश्वास क्यों पता ही नहीं फिर हम उसे विश्वास कर रहे हैं। हमें क्योंकि कहा गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। हमने मान लिया, बस आंख बंद करके मान लिया, इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं ज्ञान में, क्योंकि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसकी हमें पूरी जानकारी चाहिए, पूरा परिचय हो तब तो हम उसे याद करें ना। क्या करना है याद करने का मतलब भी पता नहीं था, ये तो अब बाबा ने आके समझाया कि याद करने का मतलब है कहना मानना, वरना तो हम उसके फोटो को याद करते रहते। इसलिए इसने फोटो हटा दिया, बोला तुमने झूठा फोटो लगा रखा, यो भी मैं कौन ही, ये तो नए बच्चों को, पहली क्लास के बच्चों को समझाने के लिए ये फोटो है, जो शिव बाबा का चित्र है, ये तो नए बच्चों को बताने के लिए ताकि उनको लगे कि भी कुछ है। उसके बाद तो कह दिया कि ये भी नहीं है, ये मेरा चित्र नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा थोड़ा हूं, ये मेरा चित्र नहीं है। अब उस चित्र को देखकर हम याद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनको रचता रहा बाप का परिचय मिला है ये भी बच्चे जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप ही उनका उनकी महिमा है, ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता ही नहीं। शिवाय नमः ठीक लगता है, ब्रह्मा नमः नहीं ठीक लगता, विष्णु नमः ठीक नहीं लगता, शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, उन्हों को देवता कहना पड़े। ऊंचे ते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। कोई भी आवे उसको किसकी महिमा बताओ, परमात्मा की महिमा बताओ। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो ये समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, याद तो शिव बाबा को ही करना है तीनों रूप में, ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ठिककर भीतर में कह दिया, ऊंचे ते ऊंचा बाप, और उसको कहा गुम कर दिया, ठिककर भीतर में कह दिया। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वे तो सिर्फ लोन लेते हैं, वे खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता, इस ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। सारी दुनिया कहती आई गॉड इज ट्रुथ, परंतु कौन है गॉड जिसको ट्रुथ कहा जाए? राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, किसको कहा जाए? कौन है जो सत्य है, जो वो कहे वो सच हो? वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। परमात्मा आकर सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। कब किसने सत्य नारायण की कथा सुनाई हो? राम ने, कृष्ण ने, नारायण ने कथा नहीं सुनाई कि सत्यनारायण की कथा मैं सुना देता हूं, मैं नारायण हूं। कोई भी देवी देवता ने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाई। और जो सुना रहे हैं वो कहानी सुना रहे हैं सत्यनारायण के व्रत रखने का क्या लाभ है? सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहे, सत्यनारायण व्रत रखने का क्या लाभ है? नरसिंह नारायण तो सत्य बाप ने बनाया है ना। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, वो कैसे बने? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो लक्ष्मी नारायण कैसे बन गए? किसने बनाया? कब कथा सुनाई? कब राज्योग सिखाया? ये सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ, ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो। वे भी परिचय से आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। ये भी नहीं जानते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मुझे हुए हैं समझते हैं प्रजापिता, मुझे हुए समय याद आ रहा है? मुझे हुए समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? उलझे हुए, सूत मूझ गया है, ठीक, उलझ गया है, समझ में नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं, दुनिया में इतने मत हैं, फैसला करना मुश्किल है किसकी बात माने। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना चाहिए। दुनिया वाले कहते ब्रह्मा सतयुग में होना चाहिए, जब सृष्टि की स्थापना की, रचना की। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया? सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया? अर्थी नहीं समझते हैं। ये साकार है कर्म बंधन में। हाँ, भक्ति मार्ग में अलग जितने मनुष्य उतनी बातें, अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में। ये साकार किसमें है? कर्म बंधन में है। ब्रह्मा जो है साकार है, वे सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म वतन में है वे सूक्ष्म है, कर्मातीत, वो कर्म से के प्रभाव से परे है। ये ज्ञान कोई में भी नहीं। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है, वे जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुना। जब वो आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुना। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है, अलग पर ही समझाना है। ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप, किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत सहज है, परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। भगवान पर जिनको निश्चय नहीं और जो उसको समझाने की प्रैक्टिस भी नहीं करता तो फिर किसको समझाए, कैसे सीखेगा? समझाएगी नहीं सकती। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है, ज्ञान नहीं देते तो गोया क्या है? अज्ञानी है। मारता है बहुत, जो चुपचाप थप्पड़ मार देता है, बताता भी नहीं कि मैं थप्पड़ मारने वाला हूँ। हाँ, वो बच्चे खेलते हैं ना, से हाथ पकड़ के बैठते हैं, ऐसे मारना पड़ता है, अभी बस लग जाए। ऐसे ही बाबा भी बिना बताए चुपचाप थप्पड़ मार देता है। यदि ज्ञान सुनाते नहीं हो ना तो तुम अज्ञानी हो। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, और भक्त अज्ञानी, भक्त अंधविश्वासी, देह अभिमान है, देह अभिमान तो क्या है? भगत। जब तक देह अभिमान है तब तक भगत, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा होती है, ज्ञानी तो आत्मा होती है, ज्ञानी तो शरीर नहीं होता। जब अपने को हम शरीर समझ रहे हैं तो हम भगत हैं। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में, जो अपने को आत्मा समझता होगा उसके पास ज्ञान होगा। तोते की तरह तो कोई भी रट लेगा, पर तो ज्ञान तो तब है जब उसके जीवन में भी हो। यदि उसके जीवन में नहीं तो कोई फायदा, तब तक वो भगत ही है। तो ऐसे ऐसे भूल ऐसे पढ़ाई पढ़ा। अब हम शरीर समझ के भी ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान समझ के बैठे हैं, तो हम भगत हैं, ये भी मुसीबत। इसलिए रोज आना कहता है आत्मा समझ कर बैठ, मुरली पढ़ो तो आत्मा समझ कर पढ़ो। हमारा बाप परम पिता परमात्मा वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है कि प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन क्या है। क्या ऑक्यूपेशन है प्रजापिता ब्रह्मा का? प्रजापिता ब्रह्मा का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या करता है? शिव बाबा को तो पता लग गया कि वो आया है सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए, नर्क से स्वर्ग में ले जाने के लिए। कैसे बना दिए? मुंह से निकाल दिए। हाँ, बाबा के ज्ञान को हर आत्मा तक पहुंचाने का ये निमित्त है। मतलब ब्रह्मा बाबा ने बाबा का ज्ञान सबसे पहले अपने जीवन में धारण किया, फिर सबको धारण करना सिखाया। पहले उन सारी आने वाली समस्याओं को सामने फेस किया और फिर बच्चों को सिखाया ऐसे तुमने सामना करना है। यह है ब्रह्मा बाबा का ऑक्यूपेशन। परम पिता परमात्मा को कंप्लीट फॉलो करना, जो बाबा ने कहा वो करना है, जिसको करने के लिए मना किया वो नहीं करना। आज्ञाकारी बना, शिव बाबा का रथ बना, शिव बाबा का आज्ञाकारी बना, जो बाबा ने कहा वो संपूर्ण अपने जीवन में धारण किया, इसलिए 100% प्योर बना, 100% जो है ना सेवाधारी बना और सर्वोच्च बना। और सभी बाकी आत्माओं में सर्वोच्च ब्रह्मा है, शिव बाबा तो पूरे यूनिवर्स का बीज है, परंतु ब्रह्मा इस मनुष्य जाति का, मनुष्य जीवन का क्या है, आदि पिता है, यानी बीज है। समझते पड़ते। एक दिन बाबा ने अभी कहा ना कि ब्रह्मा है कल्प वृक्ष का, मनुष्य या सभी धर्मों का बीज, और मैं हूं सारे यूनिवर्स का बीज। मतलब मैं बीज हूं निराकारी दुनिया का, निराकारी दुनिया याद आ रही है वो, उसका वहां दिखाया शिव बाबा। परंतु इस झाड़ का जो बीज है वो आदि प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा से जीव आत्माओं का पिता है ना, जीव आत्माओं का पिता है ना, दोनों का। परंतु शिव बाबा तो सिर्फ आत्माओं का पिता है, और जो घर में बाप है वो सिर्फ शरीर का बाप है, वो आत्मा का बाप नहीं है। और जो दोनों तीनों में कैसे वहाँ तो खैर कहानी अलग है। मतलब वो तो बाप अलग, पढ़ाने वाला हर टीचर अलग अलग, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, तो कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो कुछ, हर एक टीचर अलग अलग है। वो तो अधूरे अधूरे है ना, वो सारे अधूरे अधूरे हैं। तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया शिव बाबा ने, प्रजापिता ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन बताया, अपना भी ऑक्यूपेशन बताया, मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बम से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं ये चित्र भी कोई यथार्थ नहीं। कौन सा चित्र यथार्थ नहीं है? अपने लिए भी बोला, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के ये जो चित्र बना रखे हैं ये यथार्थ चित्र आए थे नहीं? अच्छा क्या हुआ, ये असली चित्र नहीं है, ये सारे नकली फर्जी चित्र बना रखे हैं। फिर कहते हैं फिर क्यों बनाए ये चित्र थे नहीं, सिर्फ नए नए बच्चों को समझाने बस। ऐसा है कि एक्यूरेट ज्ञान की रीति से अलग एक्यूरेट है ना, मतलब ये जो अज्ञानता है, मतलब ये जो चित्र बना रखे हैं या सीढ़ी में जो चित्र दिखा रखे हैं या सृष्टि चक्र के अंदर जो चित्र दिखा रखे हैं राधा कृष्ण के लक्ष्मी नारायण के, ये कोई असली थोड़ा है, ये तो दुनिया वाले चित्र उठा के रख दिए। बाकी ज्ञान इसमें सत्य है, ज्ञान इसमें भी सत्य है, परंतु ये जो है ना एकदम तो नहीं कह सकते ना कि ये तीनों ना है, ये तीनों फर्जी चित्र है। कहेंगे अच्छा हमारे सारे किताबें सारे गुरु सारे माता पिता सारी पीढ़ियां इसी को याद करते हैं और आज तुम कहते हो ये फर्जी है, तुम अपने धर्म ने को अपने पास अंदर घुसेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं बात को। हाँ वही ना, मतलब इतना सोचो कितनी परहेज है, कितना गुप्त रखता है बात को, खोलता नहीं है राज को। हाँ ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, कितनी क्लियर बात बाबा कह रहे हैं, मतलब चित्र हैं, वहाँ ऐसी बात कोई होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए हैं, भक्ति करने के लिए, अंधविश्वास के लिए, अज्ञानता के लिए, या अज्ञानता के चित्र हैं, भक्ति के चित्र हैं, अंधविश्वास के चित्र हैं। बाप ने समझाया है ये व्यक्त वे अव्यक्त, ये ब्रह्मा जो नीचे बैठा है ये व्यक्त ब्रह्मा है, व्यक्ति मतलब शरीर है ना, व्यक्त ब्रह्मा है और वो अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर, ध्यान से देखना, मतलब मूल वतन भी है सूक्ष्म वतन भी है, परंतु ऐसे नहीं है, ये अवस्था है। मूल वतन आत्मा की मूल अवस्था, मूल अवस्था में क्या है कि आत्मा को कोई संकल्प नहीं, वो है आत्मा की मूल अवस्था। जब संकल्प आया तो सूक्ष्म अवस्था, और जब शरीर में आए तो स्थूल अवस्था। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर ये राज्य करेंगे। अब फरिश्ता बनने का मतलब क्या होता है, हम एक्चुअल में फरिश्ता तभी बनते हैं जब हम बिल्कुल आत्म अभिमानी हो, देह का कोई भान भी ना, फिर फरिश्ता उड़ सकता है, अपने संकल्पों की गति से जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, कोई भी काम करके आ सकता है, उसे कोई एरोप्लेन की जरूरत नहीं, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए और कोई इतना तीखा रॉकेट नहीं, क्योंकि एक सेकंड में वहां पहुंच जाए, एक ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, सोचा और पहुंचा, और वहां उनको लगे कि प्रैक्टिकल ये आया है, प्रैक्टिकल ये आया है। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर क्या बन जाता है, ब्रह्मा राजा बन जाता है, नारायण बन जाता है, फिर राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना तो समझाने में मुश्किल आता है, सूक्ष्म के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किल आता हो, इसलिए बना रखे। कितनी पक्की बात बताते हैं, यदि सूक्ष्म लोक वाले चित्र ना हो तो लोगों को समझा नहीं सकते थे, समझाने में मुश्किल होती है। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। आज तोड़ कर दी सारी। ये है भक्ति मार्ग के हैं, तो कैसे मतलब एक एक लाइन मतलब बिल्कुल सारी क्लियर कर दी कि है ही नहीं, सीधा एकदम। ये है भक्ति मार्ग के चित्र, यानी ये भक्ति मार्ग के चित्र है या हमारे हाँ वकील को पकड़ना है। बाबा कहते जाओ मेरे भक्तों को समझाओ, तो ये भक्तों को समझाने के लिए है, ताकि वो समझे आ जाए एक बार, फिर उनको बताएंगे ये कितना झूठ है, नहीं ये कितना झूठ है, एकदम नहीं बताया ना, नए को बताओ तो भाग जाए, वो कहना मैं ना सुनू तेरी बात। हाँ ये है भक्ति मार्ग के चित्र, बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम, पवित्र बनेगी और फिर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी हैं यहाँ, साकारी हैं यहाँ, बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन की कितनी क्लियर बाबा बाजन, सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। ले जाओ मैं यही तो कह भाई, मैंने तो कई बार बता दिया ना, मेरे को तो नहीं समझ में आती बात, मैं करूं क्या, यानी बात कोई बात नहीं, तो जैसे जिनको समझ में आती जाएगी समझते जाएंगे, ना समझेंगे तो उनका पार्ट है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कि मुख्य कहानी है ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, कब मैंने आपको कई बार बताया कि हमने तो बड़ी दीदी से पूछा था, सुदर्शन बहन जी ने एक बार कह दिया, सुना दिया कहानी, जैसे सुनाते सुना दी, फिर हम मधुबन जा रहे थे, अब ट्रेन में बैठ कर दीदी बताओ कैसे करके चुप कर, कोई जाति पुते नहीं है, ये बताने की बात नहीं होती, बस हम कहानी घर के सुना देते। देखिए संदेश संदेशी बहन अलग हैं, सारे संदेशी नहीं है, मैक्सिमम सारे गपोड़े सुनाते हैं, बाकी बाबा ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है निमित्त, जो ब्रह्मा कुमारी यज्ञ के निमित्त हैं, वो जिन्हें भेजेंगे उन्हीं के द्वारा मैं संदेश दूंगा। अब ये आज अब सार निमित्त बहन को कहाँ कहाँ लेके जाएं, फिर इन्होंने अब ये मुझे नहीं, मैं तो देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ, निमित्त बाबा के जो शब्द है ना मैं उनको जानता हूँ, कि बाबा ने कहा जो निमित्त है मैं उन्हीं के द्वारा ही संदेश दूंगा। अब इतने लोगों का भोग लगता है, ये एक बिजनेस बन जाता है, अब उनके लिए वहाँ सब आत्माओं को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लावे, हाँ जी मैंने देखा वो आत्मा ऐसे कह रही थी, ये कह रही थी, अब ये कहानियां है, ये कहानियां है, ये कोई सत्य नहीं, ठीक है। तो मधुबन में भाई मेरे मधुबन में भी मैं बता रहा हूँ, मधुबन के अंदर अब एक वीरवार आता है, एक वीरवार को 100 जनों का, 50 जनों का, 300 जनों का, 400 जनों का भोग लग रहा है। अच्छा फिर वो बैठती है सबके वहां स्टेज पर, तो पूरा मोटा मोटा सुना देती है, फिर उनसे पहले पूछ लेते हैं कि भी है ना कौन था, क्या था, कैसा था, फिर क्योंकि उसको तो फिर उसी से फिर कुछ ना कुछ रिलेटेड बात उनको बता देती है, हर एक को बताना तो पड़ता है, भाई उन्होंने इतना पैसा दिया है भोग लगाने के लिए, है जी, उनको राजी कैसे होगा? तो उनके बारे में कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना, तो फिर एक एक को बुला के उसके बारे में ना ये कहा, अच्छा, फिर वो रिकॉर्ड करके ले आते हैं, अपने घर वालों को परिवार वालों को सुनाते हैं कि जी उनके बारे में ये कहा है। पाठ हो गया, आज हमें समझ में आ गया कि सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। क्या समझाया? कि सूक्ष्म वतन की कोई कहानी है नहीं। कितनी क्लियर लाइन है ना, बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। बताओ ये मुरली कब चली थी? अभी समझाते हैं, जब पढ़ोगे तभी समझाएंगे, क्यों नहीं? तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन, ये है तीन अवस्था, ठीक है? तो पहले पहले सबको बाप का परिचय देना, बस सारी कहानी खत्म कर दो, अब वापिस आ जाओ। सबको बाप का परिचय देना है, भक्ति मार्ग में भी बाबा को है भगवान, को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः, शिव देवताए नमः कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवताए नमः कहेंगे, शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या बितर ठिकर में जाकर करेंगे? अब परमात्मा ने सब पतितों को पावन बनाना है तो मैं क्या बितर ठिकर में जाकर करूंगा? तो करना है मैंने आत्माओं को, मैं बितर ठिकर में जाके क्या 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 करूंगा? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो लोग तो श्लोक गाते हैं फिर अर्थ सुनाते हैं, ये तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमको इनका अर्थ समझाते हैं, हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़े समझेंगे कि ये बीके हैं, पता तो लगेगा तब ना जब आप उनको अर्थ समझाएंगे। बस सफेद ड्रेस है परंतु छापा ठप्पा थोड़ा लगा हुआ है कि ब्रह्मा कुमार है, सफेद ड्रेस तो कोई भी पहन लेते हैं, लगा हुआ है। तुम कहां भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ, देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी ये इतने सब चित्र डिटेल समझने के लिए है, अथाह ज्ञान है। सागर को तो स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, फिर भी अंत नहीं पा सकते। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है, वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके, बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं, ये तो बहुत सहज है, परंतु समझते हैं। बाबा को तो वंडर लगता है, एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, गणिकाएं बोलते हैं वैश्याओं को, वो भी आकर सुनेंगी, वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है, अपने देह अभिमान के कारण उनको आती है लज्जा आती है। बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है, इसमें मुख्य चाहिए योग बल, मुख्य क्या चाहिए? योग बल, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभव, जो बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होंगे ना, वो जाकर के उनको समझा सकते हैं। बिल्कुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए, अभी वे याद का बल कुछ कम है, अभी याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान तो है, तो फिर याद कम है। जब तक याद नहीं होगा, बाबा की श्रीमत पर चलता नहीं होगा, तोता रट्टू तोता होगा तो वो नहीं समझा सकेगा। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब क्या हो गया डिफिकल्ट? क्यों? योग नहीं है तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सकते, मतलब ज्ञान को अपने जीवन में अच्छी तरह धारण करो, तब तुम गणिकाओं को समझा सकते हो, उनका उद्धार कर सकते हो। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं, उनको सुधारने के लिए कौन जाए समझाने के लिए? अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव है नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। दुनिया क्या बन जाएगी? सारा शिवालय, शिव का घर बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहां अथाह सुख है। उनको भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ऐसे पतित को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए, इसमें शायद अभी देरी, इसमें शायद अभी देरी है। समझाने में भी नंबर वार है, सेंटर पर रहते हैं, बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं, सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है, उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का परिचय दो, किसी को भी समझाना है तो पहले पहले बाप का परिचय दो। और बाप का परिचय देने के लिए क्या है? इतनी गुण सिवाय बाप के और किसके में नहीं, और किसी के हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाने बनाते हैं, बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अब ये संगम युग, जबकि तुम पुरुष उत्तम बन रहे हो, तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे? ये तो समझाते हो, आत्मा का ही शरीर है, कहां तक कोई समझते हैं? ये शक्ल से मालूम पड़ता है, कोई मूडी होते हैं, मूडी समझते हैं ना, कभी कैसे कभी कैसे। अभी अभी देखो तो इधर, अभी अभी देखो तो, कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी होगी, आत्मा समझ कर बैठेंगे तो अभी अभी अच्छे हो जाएंगे, और कभी फिर बॉडी को देह विमान में आ गए, मेरा गर्क हो गया। ये भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्यों क्यों नहीं उछल सकते? क्योंकि गोरख धंधा लगा है, सवेरे भी नाश्ता बनाना है, दोपहर को भी लंच बनाना है, रात को भी रोटी बनानी है, मुसीबत है, रोजाना का एक काम है, और कोई काम ही नहीं मिलता। झमेला सच्ची बात है। हाँ, एक खाया तो दूसरे की चिंता लग जाती है, क्या बनाना है भाई, क्या बनाना है भाई। पर भाई हैं तो उनको ड्यूटी पे लगा रहता है, जी ये कमा के लाऊं, ये करके लाऊं, आज शाम को पैसे चाहिए कि ये करूं और वो करूं, तो इसलिए गोरख धंधा लगा रहता, लगा पड़ा है। इसको गोरख धंधा बोला जाता है। इसको क्यों गोरख धंधा कहा? ये गोरख पंथ है एक, उन्होंने क्या किया कि भाई भगवान को याद करना, तो उन्होंने काम करो, काम करते हुए राम राम करो, या जो भी गुरु का नाम है भक्ति है वो करो। तो तो मतलब वो गए थे याद करने, वहां जाके बिजनेस करो अपना काम करो और गाते रहो और करते रहो। तो अब हमें वो तो समझते हैं हम भगवान को याद कर रहे हैं, है नहीं? जैसे हम भी भोग बनाए, चलो भी गीत चला दो, बाबा की गीत सुनते रहो और भोग लग बनाते रहो, परंतु वो याद तो तब होगी ना जब हम बाबा की श्री मत के अनुसार काम करें, खुश हैं, व्यवस्था से मतलब स्वच्छता से बना रहे हैं, ठीक है, हमारे मन में अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार तो बाबा की श्री मत पर चल रहे हैं तो हैं, और बाबा को भूले, अपने आप को आत्मा भूले तो कहाँ से आएंगे अच्छे विचार? देह आते ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, गर्क एकदम। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा ये देह अभिमान आया और ओम शांति, और बाबा कहेगा रावण का बच्चा ना, वो सीधा कह देता है रावण का बच्चा है तो जाओ मौज करते। पूरा अभ्यास करे तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो, याद से ही तुम पावन बनते हो, आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे, अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो, बेहद का बाप मिला बाकी क्या चाहिए बताओ? बेहद का बाप मिल गया और क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है, बाप पर तो क्या होना है? कुर्बान होगा, 1 करोड़ होगा तो भी कुर्बान होना है, 1 लाख होगा तो भी कुर्बान होना है, 100 होगा तो भी कुर्बान होना है, कुछ नहीं होगा ना जल्दी कुर्बान हो जाएगा ना। गरीब के लिए तो बड़ा आसान है ना, थोड़ा सा उठा के कुर्बान हो गया, अमीर के लिए मुसीबत है, इतना सारा कैसे कुर्बान करे, उसके लिए बड़ी मुसीबत है। सरकार कोई मुश्किल निकल, क्योंकि गरीब का सही थोड़ा सा, कल फिर देख लेंगे, हाँ देख ले कल और कमा लेंगे खा लेंगे कोई बात नहीं, सरकार कोई मुश्किल निकलते, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे, काटकोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबर वार, कितने ढेर बन जाएंगे, सौकार गरीब सब होंगे, ये पूरा पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए, तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं, कोई आश नहीं रखनी कि मैं फलानी चीज खाऊं, क्योंकि इच्छा गड़बड़ कर देगी। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं, यहाँ तो ये बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं, वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी, बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा, कहेंगे ये तो वैश्यों को भी इतना ऊंच बनाती हैं, खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे वा नहीं, पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चल जाएंगे, आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, अब भी देख रहे हो, नए नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं, नए नए बच्चे नया नया कोर्स करके करते हैं ना, उनको बड़ा जोश होता है, प्रदर्शनी लगाते थे तो नए नए बच्चों को बहुत शौक होता है, मेरे को समझ में आया मैं बताता हूँ सबको, है नहीं? तो जिनको समझ में आ गया वो बताएंगे आगे, तो सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब तुम्हारा नाम वाला हो। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं, बात की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भाव। अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि अपने आप से भी शिकायत हो जाती है, मैंने आज का दिन बेकार कर दिया, होता है ना, आज इधर फंस गया, आज उधर फंस गया, आज ये कर लेता, आज वो कर लेता, सोचते सोचते तो बहुत है ना, फिर सारा दिन कर नहीं पाते तो फिर शाम को क्या होता है। स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहेंगे कब, जब बाबा की श्रीमत पर लगातार चलेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। ये नहीं है कि परिस्थितियां नहीं खराब बदले, परिस्थितियां बदल जाएंगी, परिस्थितियां तो वही रहेंगी, परंतु आपको दुख नहीं होगा क्योंकि आपने उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संतुष्ट रखा, ये भी सेवा है, ऐसा ही होना था और इसमें कोई घाटा नहीं हुआ, हमारी खुशी गायब नहीं हो, चाहे हम कहीं पर भी हों। आपको बताया था दादी गुलजार के बारे में, बता रही थी हमारी वेदांती बहन, कौन है जयंती बहन, कभी एक बार टिकट जो है ना हुई, गड़बड़ होगी टिकट में और एयरपोर्ट पर भाई बहने तो छोड़ने के लिए जाते हैं, अब बाकी तो हम तो भाग दौड़ में लगे हुए थे, इस टिकट कैंसिल होगी दूसरे की जाए, और दादी को वेटिंग रूम में बिठा रखा था, अब दादी वहां अपना क्लास करा रही है, हम भाग दौड़ करते हम हमें देखे दादी मस्त, जब आएगा जहाज चले जाएंगे, नहीं तो हम बैठे अब अपना काम करें, ठीक है, मतलब कहने का यह है कि दादी अपने मस्त क्लास शुरू चालू है, जितने भी भाई बहन है ठीक है, बाबा की चर्चा में मस्त है, जाना होगा चले जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, दादियों को कोई परवाह नहीं, ऐसे ही हमें भी कोई परवाह नहीं करनी है, हम जहाँ हैं बाबा की श्रीमत पर हैं, बस खुश, हमने अपना काम चल रहा है, ठीक नहीं, चाहे मन चिंतन करो तो चाहे किसी के साथ ज्ञान चर्चा करो, दोनों बातें एक है, उसमें स्वयं से चर्चा करनी है, उसमें दूसरे से चर्चा करनी, गंध का मंथन बुद्धि में नहीं हो, व्यर्थ का मंथन बुद्धि में नहीं हो, असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। तो आपने कुछ ना कुछ पा लिया, चाहे मनसा से मन में मन मना भाव करते रहे अपने साथ या दूसरे के साथ, तो आपने कुछ ना कुछ पाया, परंतु नहीं पाएंगे तो फिर असंतुष्टता, क्योंकि अप्राप्ति फिर हमें असंतुष्ट करती है, यदि हमें प्राप्ति हो रही है तो फिर असंतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि हमने टाइम वेस्ट किया, ये वेस्ट करना असंतुष्टता को लाएगा। आपका स्लोगन है पाना था सो पा लिया, बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना, ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी, स्लोगन है। बाप समान बनने के लिए समझना चाहिए और चाहना और करना, इन तीनों की समानता, समझना चाहना और करना, तो हम चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? क्योंकि आज के सारे संसार के दुखों का कारण ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। मतलब ज्ञान तो हम कुछ ले रहे हैं, इच्छा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, तो तीनों अलग अलग होंगे। यही विडंबना है जीवन, यही हमारे दुख का कारण है। मतलब बाबा भी हमें यही समझा रहे हैं कि ये हमारे दुख का कारण है। अव्यक्ति साइलेंस, तो क्या व्यक्त मास चल रहा है, डबल लाइट परिश्ता सिद्धि का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।